जमीन पहले लेते हो या फिर पहले भवन खड़ा करते हो? जमीन लेने में कितनी देर लगती है? बहुत देर नहीं लगती। फिर भवन बनाने में टाइम लगता है। अभी आपके सामने ही उदाहरण है, यहाँ बाजू में। दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही थोड़ी सी, मशीन की आवाज है ना। अब वो दादाजी को उठाकर करवा रहे हैं आप काम। इसके आगे कह रहे हैं, सुठ पवित्तम दव्वम सरस सुगंधम मनोहरम जंपी देह निहितम जायदि घृणावणम सुठ दुर्गंधम। अत्यंत पवित्र कोई द्रव्य है, पदार्थ। सरस सुगंधम, सरस भी है माने रस वाला भी है, स्वादिष्ट है, और सुगंधम यानी सुंदर गंध वाला भी है। मनोहरम, दिखने में भी मन को हर ले, इतना सुंदर। लेकिन देह निहितम, शरीर में अगर उसको निहित कर दिया जाए, यानी शरीर में अगर उसको पहुंचा दिया जाए उस पदार्थ को, तो सुठ दुर्गंधम घिनावणम जायदि, अत्यंत दुर्गंधित और घिनावना बन जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण या फिर सबसे सरल उदाहरण ये है कि आप मिठाई बना करके खाते हैं, खाते समय आप आईना सामने रखकर मुंह खोल लेना, बिल्कुल ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। अभी क्या है कि वो तो अंदर जाने के बाद आप सोचते हैं कि उसमें खराबी आती होगी, लेकिन नहीं, ये बस इसके अंदर चला जाए, होठ और दांत के भीतर, हो गया खेल खत्म। ये हाल है शरीर का। और उसको देखने के बाद गले के नीचे उतारना भी कठिन होगा, वो तो सब ये कवरिंग है ना अंदर, पूरा सब अंदर होता है पूरा, इसलिए अपने को समझ में नहीं आता कि कितनी भयंकर दशा हो रही है। अगर मुंह खोल करके दर्पण सामने रखकर कोई खाना खाए, चबाता जाए, तो खा ही नहीं सकता वो। ये दशा है शरीर की। मणुयाणम असुईमयम विहीणा देहम विनिमयम जान ते सिम विरमण कज्जे ते पुनर्पतथेव अनुरत्ता। क्या गाथा है, यानी एकदम एक कटाक्ष जैसा किया आचार्य कुमार कार्तिकेय मुनिराज ने। मणुयाणम देहम विहीणा असुईमयम विनिमयम, कर्म ने मनुष्यों के शरीर को अपवित्र बना दिया। और तेसिम विरमण कज्जे, और एक एक वस्तु ऐसी फिट करी है शरीर में कि इसको वैराग्य हो, क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही वैराग्य द्वारा जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो कर्म ने तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था बना करके दे दी कि भाई तू जल्दी से वैराग्य को प्राप्त कर ले, जान, ये बात जान लो। लेकिन ते पुण तथ्य अनुरक्ता, ये मनुष्य ऐसा प्राणी निकला कि वो उन्हीं चीजों में अनुरक्त हो गया। कैसी विडंबना है, यानी कर्म ने इसको वैराग्य की सामग्री दी और फिर ये मनुष्य ऐसा विचित्र प्राणी निकला को वो वैराग्य के बदले उसी में रागी बन गया। शरीर के उन्हीं हिस्सों में राग करने लग गया। एवं विहंपि देहम पिच्छन्ताविय कुणन्ति अनुरायम सेवन्ति आयरेणय अलद्ध पुवन्ति मन्नन्ता। अब शरीर के प्रति अनुराग होने के कारण ये सारे मनुष्य देहम एवं विहंपि पिच्छन्ता, शरीर को अपवित्र देखते हुए भी अनुरायम कुणंती, उसके प्रति अनुराग करते रहते हैं, उनका राग टूट नहीं पाता। और अलब्ध पुवंति मंडनता, आज तक मुझे कभी ऐसा शरीर नहीं मिला होगा ऐसा मानते हुए आयरेण सेवंती बहुत आदर पूर्वक इस शरीर की सेवा करते हैं। आदर पूर्वक सेवा का मतलब क्या है? जैसे गुरु महाराज आ गए और गुरु महाराज अगर कोई पुस्तक निकालना चाहते हैं अलमारी से, तो फिर जो सेवाभावी भक्त है वो तत्काल उस अलमारी को खोल करके और फिर निवेदन करता है कि महाराज जी मुझे बताइए, मैं निकाल करके देता हूँ। इसी प्रकार देखो गुरु की सेवा में कितना आदर है, या ये शरीर की सेवा में इतना ही आदर जीव का होता है, बल्कि कभी कभी उससे ज़्यादा भी होता है। शरीर कहता है कि मुझे गुटखा चाहिए, तो फिर जीव कहता है जी 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 बिल्कुल अब भी तुरंत। फिर शरीर कहता है भजिया चाहिए, अरे बिल्कुल मैं तो सेवा में ही हूँ। फिर वो कहता है मिठाई चाहिए, तो फिर जीव कहता है कि जी सरकार अब भी आती है मिठाई, आई रही बस। तो इस प्रकार दास का दास बनकर शरीर का सेवक यह जीव जीवन भर उदास रहता है, आकुल व्याकुल बना रहता है। जो परदेह विरत्तो निय देहे नय करे दि अनुरायम अपसर्वसुरत्तो असुइत्ते भावनातस। जो दूसरों के शरीर के प्रति विरक्त होते हुए अपने शरीर में भी अनुराग नहीं करता और अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप में अच्छी तरह अनुरागी रहता है, असुइत्ते तस भावना, अशुचित्व में उसकी भावना सार्थक होती है। यानी शरीर की अशुचिता को भाना उसके लिए सार्थक हो जाता है जो स्व और पर के शरीरों में राग छोड़कर अपनी आत्मा में अच्छी तरह अनुरक्त हो जाता है। अपने स्वरूप में जो अनुराग रखता है उसके लिए अशुचित्व अनुप्रेक्षा सार्थक है। अब शरीर अपवित्र है, इसका वर्णन निर्विचिकित्सा अंग में भी समंतवद्र स्वामी आदि आचार्यों ने किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने शरीर को पवित्र कहा है, नहीं कहा? शरीर को पवित्र कहा कि अपवित्र कहा? स्वभाव तो शुचौ काये, स्वभाव से अपवित्र है। रत्नत्रय पवित्र थे, लेकिन रत्नत्रय के कारण पवित्र है। ये भी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। इसका स्वरूप तो अशुचि है शरीर का, लेकिन अगर शरीर में रहने वाली आत्मा रत्नत्रय को धारण करने वाली है तो फिर ये शरीर पवित्र माना जाता है। और उन मुनिराज के चरणों में लगी हुई धूल भी इंद्र अपने मस्तक पर लगाते हुए अपने आप को भाग्यशाली समझता है। धूल की क्या कीमत और शरीर में क्या सार, तो धूल का कोई मूल्य नहीं है और शरीर में कोई सार नहीं है, लेकिन अगर आत्मा रत्नत्रय को धारण कर ले तो फिर जिस शरीर में रहकर रत्नत्रय को आत्मा धारण करती है वो शरीर भी पवित्र होता है। और इसीलिए रिद्धियों के वर्णन के अंतर्गत बताया कि ये शरीर अशुचि का ढेर है, लेकिन फिर भी मुनि की आत्मविशुद्धि और तपस्या के प्रभाव से ये भी चमत्कारी बन जाता है। यानी उनकी चरण रज भी रामबाण औषध बन जाती है, किसी भी रोग का निवारण करने की सामर्थ्य उस चरण रज में होती है। अब इसमें फिर पुण्य पाप का जो एकांत करने वाले लोग हैं, वो हमने एक दिन बताया था कि ये कर्मवाद है, नियतिवाद, पुरुषार्थवाद, ये सारे जो एकांतवाद है वो जैन मत के अंतर्गत नहीं है, जैन मत स्यादवाद है। और ये सारे एकांतवाद मतलब एक उसी को कारण मान करके बाकी सबको बेकार समझते हो। अब जैसे लोग ये मानते ना कि कि पुण्य का उदय होगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा एकांत नहीं है। पाप के उदय में भी यदि कोई ऐसा निमित्त मिले, और पाप के उदय में निमित्त न मिले ऐसा भी एकांत नहीं है। कदाचित पाप के उदय में भी कोई ऐसा निमित्त जुड़ जाए, चल रहा है पाप का उदय। उदाहरण हम देते हैं आपको, क्योंकि उदाहरण के बिना कोई बात पुष्ट नहीं हो सकती। एक मंगी नाम की वज्र मुष्टि पहलवान की पत्नी, उसको भयंकर जहरीले सांप ने काट खाया, तो वज्र मुष्टि पहलवान उसको मरी हुई समझकर श्मशान ले गया। अब श्मशान में एक रिद्धिधारी साधु खड़े हुए थे, औषध रिद्धि के धारक थे। उनके चरणों की कृपा से विष समाप्त हो गया, ये ठीक हो गई। तो वज्र मुष्टि मुनिराज के चरणों में प्रार्थना करता है कि गुरुवर, मेरी पत्नी ठीक हो गई तो मैं सहस्र दल कमल से आपकी पूजा करूंगा, और कमल लेने चला जाता है। और फिर आगे दूसरी घटना होती। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि मंगी को जो सांप ने काटा था उस समय पाप का उदय था, और अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि उसके पुण्य का उदय आया इसलिए वज्र मुष्टि महाराज के पास ले आया, यही बात आ रही है ना? बिल्कुल यही बात आती है। अधिकांश लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि उसके पुण्य का उदय आया होगा तो फिर वो महाराज के पास ले आया। लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है कि यदि उसके पुण्य का उदय आ जाए तो फिर महाराज का महत्व ही क्या रहा? फिर तो उसके पुण्य के उदय से ही जहर उतर जाया। नहीं आया समझ में? यदि पुण्य के उदय से सब काम होता है तो फिर महाराज की चरण रज का क्या महत्व? फिर तो घर बैठे बैठे ही जहर उतर जाता। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे प्रबल निमित्त जैन आगम में बताए गए हैं कि जिन निमित्तों के संयोग से ऐसे अतिशय होते हैं उसमें भी फिर कारण कार्य व्यवस्था कहीं भंग नहीं होने वाली। उसको अगर आप 10 करण को समझ लो ना, कर्म सिद्धांत के, उपशम, क्षय, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्त और निकाचना, इन करणों को अगर समझ लो कि कर्मों में कैसे चेंजेस आते हैं, और वो ऑटोमेटिक नहीं आते कभी, उसके लिए कुछ अंदर के भावों का पुरुषार्थ भी हो सकता है और कभी कोई बाह्य निमित्त भी सहकारी हो सकता है। जैसे एक दिन हमने उदाहरण दिया था कि अगर आप सारा कर्माधीन मान लो पूरे संसार की व्यवस्था को, तो क्या होगा कि फिर पुरुषार्थ को कोई स्थान नहीं मिलेगा, पूरा भाग्यवादी हो गए फिर आप। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि गर्मी के मौसम में चप्पल से बाहर पैर निकालकर धरती पर रख दिया रोड पर गरम गरम, अब तकलीफ होने लग गई, तो आप कहो कि असाता का उदय आने वाला था इसलिए पैर बाहर निकाला मैंने चप्पल से। ऐसा है क्या गणित उसका? फिर वापस डाल लो चप्पल के अंदर पैर, तो वो तो साता का उदय आने वाला था इसलिए वहां से पैर उठाना पड़ा मुझे, ऐसा है क्या? अरे दर्द हो रहा था इसलिए उठाना पड़ा, क्यों बेईमानी करते हो यहां पर? ईमानदारी से बोलो, तकलीफ हो रही थी इसलिए उठाना पड़ा पैर। और फिर जो चीज भविष्य में होने वाली है उसको जैन दर्शन में कारण नहीं माना गया। साता का उदय भविष्य में आने वाला है और घटना अभी हो रही है उसके कारण, तो कारण भविष्य में है और कार्य वर्तमान में है, ऐसा गणित जैन दर्शन में नहीं। जैन दर्शन में क्या है, कारण जो होता है वो समकालीन भी होता है, पूर्वकालीन भी होता है, लेकिन उत्तरकालीन नहीं होता। तो जो लोग ये मानते हैं कि कारण उत्तरकालीन है, उत्तरकालीन मतलब घटना के बाद, तो फिर उनको कारण कार्य व्यवस्था ही नहीं मालूम, क्योंकि कार्य बिना कारण के हो गया यहां पर, क्योंकि कारण तो अभी बाद में आएगा, वर्तमान में तो कारण नाम की कोई चीज है नहीं वहां, लेकिन घटना हो गई है। अब जैसे वही हमने कहा था, एक उदाहरण दिया था कि वो अग्नि का जल बन गया था सीता के शील के प्रभाव से। तो भक्तामर प्रवचन में सौराष्ट्र से जो छपे हैं उसमें प्रवक्ता ने कहा है कि वो तो वैसा कुदरती योग था, लेकिन शील की महिमा दर्शाने के लिए उपचार से ये कथन किया जाता है कि सीता के शील के प्रभाव से वैसा हुआ, वरना वो तो होना ही था। ये व्यवस्था जैन आगम की व्यवस्था नहीं है। ये क्या, या तो इसको नियतिवाद कह लो, कालवाद कह लो, स्वभाववाद कह लो, कुछ भी कह लो, वाद तो बहुत सारे हैं, 363 मत हैं, तो उनमें से कहीं भी फिटिंग हो जाएगी उसकी ऐसे कथन की। लेकिन जैन मत में निमित्त और उपादान दो बातें हैं, पूरे कारण कार्य व्यवस्था दो बातों पर आधारित है, निमित्त और उपादान। निमित्त जो होता है वो कोई सहकारी पदार्थ हो किसी घटना में, उसको निमित्त कहते हैं, और उपादान जिसमें वो घटना घटित हो रही है उसको उपादान कहते हैं। जैसे किसी जीव ने दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने वाला जीव उपादान है दीक्षा का, और फिर दीक्षा जिनसे ली है गुरु, वो उस दीक्षा में निमित्त है। आ गया ना समझ में? तो इसी प्रकार ये सारी घटनाएं हैं, निमित्त और उपादान का रहस्य जो है उसमें अध्यात्म ग्रंथों में केवल ये भाव जगाने का प्रयास किया है आचार्यों ने कि तुम निमित्त के भरोसे मत पड़े रहो, तुम अपने अंदर से भी कुछ जागृति लाकर पुरुषार्थ करो, ये एक भाव मात्र है उसमें समय सार आदि ग्रंथों में। लेकिन निमित्त कोई काम का नहीं होता, व्यर्थ होता है, ऐसी धारणा बनाने के लिए वो उपदेश नहीं है। और जो उस उपदेश को सुनकर ऐसी धारणा बनाता है वो फिर जैन आगम की कारण कार्य व्यवस्था का लोप कर देता है, और कारण कार्य व्यवस्था जहां समाप्त हो गई तो वहां मिथ्यात्व अवश्यम भावी है। क्योंकि जिसकी धारण में धारणा में कारण विपर्यास हो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक ज्ञान संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन तीनों से रहित होता है। अब विपर्यय जो होता है उसके तीन भेद है, सर्वार्थ सिद्धि में बताया है। विपर्यय माने विपरीत निर्णय। अब विपरीत निर्णय तीन प्रकार के होते हैं, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण विपर्यास। स्वरूप विपर्यास यानी किसी पदार्थ के स्वरूप के बारे में विपरीत निर्णय हो गया, स्वरूप विपर्यास है। अरे नहीं, शरीर तो जिंदा ही है, यही जीव है, तो पुद्गल को जीव मान लिया तो ये अजीव के स्वरूप में विपर्यास आ गया, और अजीव के स्वरूप में विपर्यास आया तो जीव के स्वरूप में भी निश्चित रूप से आया ही आया, स्वरूप विपर्यास। फिर भेदाभेद विपर्यास, दो को एक मान लेना या एक को दो मान लेना, भेद में अभेद का विपर्यास और अभेद में भेद का विपर्यास। अभिन्न है लेकिन फिर भी भेद मान लिए, जैसे वैशेषिक मत वालों ने आत्मा और ज्ञान को दो अलग अलग सत्ता वाले माना है, जबकि जैन दर्शन ने ज्ञान को आत्मा का गुण तो माना है, तो इस अपेक्षा से तो भिन्न है, गुण अलग है, गुणी अलग है, गुणी गुण नहीं है और गुण गुणी नहीं है, लेकिन दोनों की सत्ता अलग अलग है ऐसा नहीं माना जैन दर्शन। आपको समझ में आ रही भाषा? यानी ज्ञान का अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व से अलग हो कहीं, ऐसी मान्यता जैन दर्शन की नहीं है, लेकिन उन्होंने माना है अन्य मत में, उन्होंने युत सिद्धि माना है, जिसका वर्णन विस्तार से राजवार्तिक आदि ग्रंथों में खूब अच्छे ढंग से किया गया है। युत सिद्धि, युत सिद्धि का मतलब वो ज्ञान आया आत्मा में जुड़ा तो आत्मा ज्ञानी कहलाया, ज्ञान के अभाव में आत्मा ज्ञानवान नहीं था। जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान के अभाव में आत्मा आत्मा ही कहाँ होगा, ज्ञान बिना तो जीव हो ही नहीं सकता, जानना तो जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। तो ये स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, तो वो भेद जो होता है किसी दृष्टि से किया जाता है और उस दृष्टि को न समझने के कारण वो सर्वथा भेद मान लेता है, ये भेद विपर्यास हो गया। अभेद विपर्यास क्या है? भेद होते हुए भी दोनों को अभेद मान ले, जैसे शरीर और जीव लक्षण की अपेक्षा से दोनों में भेद है, क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों एक ही क्षेत्र में है, लेकिन एक क्षेत्र में होने के कारण वो एक अपेक्षा से अभेद है, लेकिन लक्षण की अपेक्षा से देखो तो भेद वहां पर है, सुनिश्चित भेद है, लेकिन उस भेद को न जानने वाला क्या करता है, भेद में अभेद का निर्णय करता है, और भेद में अभेद का निर्णय करना विपर्यास हो गया। दो को एक मान लेना या एक को दो मान लेना, ये दोनों प्रकार के विपर्यास भेदाभेद विपर्यास में आते हैं। और फिर तीसरा विपर्यास क्या है, कारण विपर्यास। अब कारण विपर्यास किसको कहते हैं, कारण के बारे में विपरीत निर्णय लेना। कहीं आप जा रहे थे किसी काम से, अब रास्ते में कोई मिल गया आपको, जय जिनेंद्र बोला आपसे उसने, आप गए, काम सफल हो गया, तो आपने कारण क्या माना काम का, वो व्यक्ति मिला था, अब तो मैं उसी से मिलकर जाऊंगा कहीं भी काम करने, माने उस कार्य की सफलता का कारण आपने किसको मान लिया, एक व्यक्ति को, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया वहां, उसने सिर्फ जय जिनेंद्र बोला है। अथवा किसी कार्य की असफलता में भी किसी को कारण मान लेते हैं, जैसे मान लो बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, अब परीक्षा देने जा रहा है तो रास्ते में कोई दिखाई देता है उसको, अब वो जाता है देने और फिर परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसको लगता है कि इसके कारण फेल हो गया, फेल किसके कारण हुआ है। तो कारण और कार्य में भी कई बार भ्रम होता है। अब यहाँ पर आपके एक निकटवर्ती गांव फतेहपुर में एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने नागपुर में एक बार व्याख्यान दिया था कि एक बार मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं बहुत बीमार पड़ा हुआ था, और उस समय जो उनके मतलब श्रद्धेय हैं वो पहली बार मेरे घर पधारे, और जब घर पधारे उन्होंने दरवाजे में प्रवेश किया और मेरा बुखार चला गया। अब देखिए ये क्या है, अब एक तरफ ये भी कहना कि चमत्कार फमत्कार कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ ये भी कहना कि उनके आते ही साथ मेरा बुखार भाग गया, ये क्या है, ये भी कारण विपर्यास है। किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, एक दृष्टांत मात्र है। अब जो जहां चला गया उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं, लेकिन जो घटना है और इसके मतलब अपने पास प्रमाण भी है, जहां पर उनने जो चीज कही है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उनने बहुमान में ये बात कही थी, मतलब एक सम्मान के रूप में उनने गुणगान करते हुए ऐसी महिमा से उनको मंडित किया था। लेकिन यहां पर विचारने की बात यह है कि अपन कभी कभी तो बाल की खाल निकालते हैं और कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिसमें वो सारा ज्ञान धूल में चला जाता है। तो इसको कारण विपर्यास कहते हैं कि किसी चीज का कारण किसी भलती चीज को मान लेना जो उसका कारण है नहीं। तो कारण विपर्यास, कारण विपर्यास के अंतर्गत ये सारी बातें भी आती है, निमित्त और उपादान कारणों को लेकर के भी कई बार विपर्यास होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उपादान से ही सारे कार्य होते हैं, और कभी कुछ लोगों को ये लगता है कि निमित्त से ही सारे कार्य होते हैं। दोनों गलत है। दोनों गलत क्यों है, क्योंकि न तो उपादान से सारे कार्य होते हैं न निमित्त से सारे कार्य होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों में उपादान और निमित्त दोनों का स्थान होता है। वो तो अध्यात्म ग्रंथों में निमित्त को गौण किया है, निमित्त को समाप्त नहीं किया गया है। गौण करना अलग बात है, समाप्त करना अलग बात है। पर अगर कोई समाप्त कर दे तो कारण विपर्यास हो जाएगा। तो यही बात यहां बतलाई जा रही थी कि शरीर अशुचि है, ऐसा चिंतन क्यों करना कि इसके प्रति अपना राग न हो। लेकिन शरीर अशुचि है इस बात को सुनकर अगर आप शरीर से घृणा करने लग जाओगे तो फिर मुनियों के चरणों की सेवा असंभव हो जाएगी, साधुओं की वैयावृत्ति नहीं की जा सकेगी। और साधुओं की वैयावृत्ति सिर्फ साधु करते हैं ऐसा नियम नहीं है क्या? साधुओं की सेवा शास्त्रों में आया ना, 12 प्रकार के अंतरंग, 12 प्रकार के तप में 6 बाह्य और 6 अंतरंग। अंतरंग तपों में एक वैयावृत्ति नाम का तप आया है, तो वो तप, तपस्वी तो तप करेंगे ही, लेकिन साधुओं की सेवा साधु साधु के ढंग से कर सकते हैं और गृहस्थ गृहस्थ के ढंग से कर सकता है। प्रवचन सार ग्रंथ के 3रे अध्याय में इसका बड़ा सुंदर विवेचन है, वहां पर इस बात का खुलासा है कि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो साधु नहीं कर सकते बल्कि गृहस्थों को ही करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में कोई ऐसी स्थिति बन रही है साधु के शरीर में कि जिसका प्रतिकार सिर्फ हाथ पांव दबाने से नहीं हो सकता, औषध तैयार करके आहार में उस समय देना पड़ेगी, वो कौन करेगा? क्या कोई मुनि खलबत्ता लेकर कूटेंगे क्या औषध, सोंठ पिपरी मूल और वो सब लेकर के, और फिर चाशनी बनाएंगे क्या उसमें रख करके आग पर? सवाल ही नहीं उठता। तो कुछ सेवाएं जो होती है वो गृहस्थ आश्रित होती है, कुछ सेवा साधु कर सकते हैं। आधी रात को मान लो किसी साधु को सिरदर्द हो रहा है या कोई ऐसी बेचैनी हो रही है, तो फिर वहां जो निकट साधु हैं वो उनकी सेवा करेंगे जैसी बनेगी वैसी, और अगर ज्यादा विकट स्थिति हुई तो फिर वो जनसंपर्क भी करेंगे साधु। प्रवचन सार में उल्लेख है कि जनसंपर्क साधु को अन्य साधु की सेवा के लिए करना वर्जित नहीं है। फालतू में जनसंपर्क करना तो साधुता के लिए अनिष्टकारी हो सकता है, लेकिन किसी अन्य साधु की सेवा करना हो तब जनसंपर्क हो सकता है। तो अगर उस समय आप अशुचित्वानुप्रेक्षा लेकर के बैठ जाओ तो क्या वो प्रसंग है? तो प्रसंग देखकर किसी भी प्रकरण का समुचित भाव ग्रहण करना ही सच्चा स्वाध्याय है, वरना किसी प्रसंग की बात को किसी दूसरे प्रसंग में लागू कर दो तो सब काम बिगड़ जाएगा। अब आत्मचिंतन की जो बात है वो सामायिक आदि काल में श्रेष्ठ है, लेकिन प्रवृत्ति के समय कुछ अलग परिणति होती है जीवों की मन वचन काय से संबंधित। भले वो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हो, लेकिन प्रवृत्ति के काल में कुछ अलग धारणाएं और भावनाएं होती है। अंतरंग की जो आस्था है वो तो तत्वार्थ श्रद्धान रूप ही रहेगी सम्यक दृष्टि की, लेकिन प्रवृत्ति के काल में भरत चक्रवर्ती को नहीं था क्या तत्वार्थ श्रद्धान? लेकिन युद्ध करने के 60,000 साल तक दिग्विजय की और आखिरी में भाई के साथ भी लड़ाई कर दी, तो उस समय मिथ्या दृष्टि थे क्या? अब किसी एक विद्वान का तो कहना है कि हाँ मिथ्या दृष्टि थे उस समय, अब उनके ज्ञान की बलिहारी है भाई। अधूरे स्वाध्याय का ये नतीजा निकला कि वो ऐसे महापुरुष को भी मिथ्या दृष्टि कहने से नहीं चूक रहे हैं, उनको खुद ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन सा गुणस्थान है, लेकिन बोलने में कौन चूकता है? इतने जल्दी महापुरुषों का भी अवर्णवाद कर डालते हैं लोग। तो प्रसंग देखकर मुनिराज का शरीर भी पवित्र है ये याद रखना। और सुकुमाल चरित्र को अगर आप पढ़ें तो पता चलेगा कि शालिनी जब उनके शरीर को खा गई और पेट में से आते भी खींच ली और उस समय सुकुमाल स्वामी का 11वें गुणस्थान में प्राणांत हो गया, वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में चले गए, तब सौधर्म स्वर्ग का इंद्र बहुत सारे देवताओं को लेकर अपने साथ वहां आया और फिर उस शरीर की उसने पूजा की है। क्या सौधर्म इंद्र मूर्ख था? क्या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? ये सारी बातें विचारणीय हैं। और फिर नए निक्षेपों का जिसको ज्ञान हो उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वही सौधर्मेंद्र एक बच्चे का भी अभिषेक करता है सुमेरु पर्वत के शिखर पर, और उस अभिषेक को, उस जन्म कल्याणक के उत्सव को बड़े बड़े सामान्य मुनि नहीं, बड़े बड़े चारण रिद्धिधारी मुनि भी वहां जाकर देखते हैं। तो चारण रिद्धि मुनि एक बच्चे का स्नान देखने जाएंगे क्या? क्यों देखेंगे? वो किसी और भाव से वहां पर खड़े होकर के देखते हैं। मूलाचार में आया कि जन्म कल्याणक के क्षेत्रों में जाकर के मुनिराज तीर्थ वंदना करते हैं। जन्म कल्याणक के क्षेत्रों में क्या मतलब है? अभी जो ये एक एकांत धारणाएं चल रही है लोगों की कि सिर्फ रत्नत्रय ही पूज्य है और बाकी रत्नत्रय से जुड़ी हुई वस्तु या फिर बाकी जो निक्षेपों की व्यवस्था के अनुसार जो द्रव्य जिन जन्माभिषेक के समय वो कौन है जिनका अभिषेक हो रहा है? बालक है या द्रव्य जिन है? द्रव्य जिन है। निक्षेपों की अगर जानकारी हो आपको, तत्वार सूत्र अगर पढ़ा हो ध्यान से, तो भाव जिन वहां होंगे समवसरण में, और अभी जन्म के समय क्या है? द्रव्य जिन है।